بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام کا کامیاب صدارتی الیکشن، عوام کی توقعات اور بعد کے حالات. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، شام کے صدارتی الیکشن میں جہاں شامی عوام نے بھرپور طریقے سے بشار اسد پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، وہیں شام کے صدارتی الیکشن میں دو دیگر صدارتی امیدواروں نے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے صدر بشار اسد پر. بشار اسد کے حریف اور صدارتی امیدوار ماہر حجار نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ شامی عوام نے بشار اسد کو اس بات کا مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ملک سے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کریں. ماہر حجار کا کہنا ہے کہ شام کی سبھی سیاسی جماعتوں اور گروہوں کو متحد کرنے کے لیے قومی مذاکرات کے منصوبے کو صدر بشار اسد ہی عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، جبکہ ایک اور صدارتی امیدوار حسان النوری نے کہا وہ بشار اسد کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں. گزشتہ منگل کو شام کے شاندار اور تاریخی الیکشن میں صدر بشار اسد کو 88% ووٹ ملے اور یوں انہوں نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی. 3 سال تک بحران کا سامنا کرنے اور غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے ذریعے ملک میں جاری دہشت گردانہ کاروائیوں کا مقابلہ اور طرح طرح کی پابندیوں اور دھمکیوں کا سامنا کرنے کے باوجود آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بشار اسد شامی عوام میں اس قدر مقبول ہیں؟ شامی عوام نے اتنی مشکلات اور شدید بحرانوں کے باوجود کیوں ایک بار پھر بشار اسد کو ہی منتخب کیا؟ بشار اسد کے لیے شامی عوام کے مینڈیٹ سے شام کے بحران کو ختم کرنے میں کتنی مدد ملے گی؟ صدارتی الیکشن میں 73% سے زائد ٹرن آؤٹ ہونے کے بعد بھی امریکہ اور مغرب نے اس الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور مغربی ملکوں کا یہ پروپیگنڈا کیا بے نقاب نہیں ہو گیا کہ شام کی ایک اقلیت ہی بشار اسد کی حامی ہے؟ اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کرنے والے 11 ملین رائے دہندگان میں سے 10 ملین سے زائد رائے دہندگان کا بشار اسد پر اعتماد کیا ایک اقلیت کا اعتماد ہے؟ جی ہاں، اب جبکہ شام کے عوام نے مغرب اور اپنے دشمنوں کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ دہشت گردی سے ان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، تو امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی آئندہ کی پالیسی کیا ہوگی؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کی ہم کوشش کریں گے اپنے اس پروگرام میں، جس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محمد مہدی شرافت صاحب کو، جو ابھی حال ہی میں شام کے صدارتی الیکشن کا قریب سے جائزہ لے کر دمشق سے لوٹے ہیں. ادھر لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے تجزیہ نگار مخصوص صدیقی، اور دہلی اسٹوڈیو میں ہوں گے ہندوستان کے سینئر صحافی سورب کمار شاہی. مگر لیجیے پہلے یہ رپورٹ، ملاحظہ فرمائیے.
شام کے حقیقی دوستوں کی توقع کے مطابق آخر کار اس ملک میں صدارتی انتخابات انتہائی پرجوش اور پرامن ماحول میں منعقد ہوئے، اور شامی عوام نے اپنے ووٹوں کی طاقت سے ایک بار پھر مغربی ملکوں اور ان کے علاقائی اتحادیوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا. شام میں 3 جون کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں 3 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا، اور دہشت گردوں کی تمام تر دھمکیوں کے باوجود لوگوں نے پوری آزادی کے ساتھ اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. لیکن امریکہ اور مغرب کو شامی عوام کا جمہوری انداز ایک آنکھ نہیں بھایا. شاید انہیں جمہوریت سے زیادہ اس ملک کے عوام اور حکومت کو دہشت گردوں کے ساتھ مزید الجھائے رکھنے میں دلچسپی تھی. انسانی حقوق کے دعویدار مغربی ملکوں کی جانب سے شام میں سیاسی اصلاحات کے بعد ہونے والے پہلے صدارتی انتخابات کی مخالفت بالکل فطری تھی، کیونکہ انہوں نے شام میں حکومت کی تبدیلی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا. امریکہ اور مغرب نے اپنے علاقائی اتحادیوں کے ساتھ مل کر شام میں باہر سے اپوزیشن کو مسلط کرنے کی کوشش، اسے مالی اور سیاسی امداد فراہم کی، اور یہاں تک کہ اسے مسلح کر کے شام کی حکومت اور عوام کے قتل عام کی کھلی چھوٹ دے دی. اعداد و شمار کے مطابق 74% شامی لوگوں نے انتخابات میں حصہ لے کر اپنے ملک کے بارے میں مغرب کی اسٹریٹجی اور دہشت گردی کے خلاف اپنا جمہوری فیصلہ سنا دیا ہے. شامی ٹیلی ویژن کے مطابق ملک کے صدارتی انتخابات میں 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے کے اہل تھے، جن میں سے 1.1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. شامی پارلیمنٹ کی دعوت پر انتخابات کی نگرانی کے لیے شام میں جانے والے پارلیمانی وفود نے بھی انتخابات کو شفاف اور آزادانہ قرار دیتے ہوئے عوامی بھاری مشارکت کی تصدیق کی ہے. شام کے دوست ملکوں ایران، روس، فلپائن، تاجکستان، وینزویلا، یوگینڈا، زمبابوے اور بولیویا کے پارلیمانی وفود انتخابات سے ایک دن پہلے ہی دمشق پہنچ گئے تھے. اس کے علاوہ امریکہ، یورپ اور دنیا کے بہت سے دوسرے ملکوں کے غیر سرکاری ماہرین، صحافی اور دانشور حضرات نے شام کے صدارتی انتخابات کی نگرانی کی ہے۔ آخرکار 4 جون کو شامی عوام کے جمہوری فیصلے کا اعلان کیا گیا، جس کے مطابق صدر بشار اسد ایک بار پھر 7 برس کے لیے ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ شامی عوام کے اس 2 ٹوک فیصلے نے امریکہ، صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے غم و غصے کی آگ کو مزید بھڑکا دیا، لیکن شامی عوام نے جس طرح سے خوشی کا اظہار کیا، اس کی مثال شاید 4 سال سے جاری فورن اسپانسر ٹیررزم کے شکار اس ملک میں دکھائی نہیں دیتی۔ صدر اسد نے بھی اپنے پہلے رد عمل میں جمہوریت کو مضبوط بنانے اور اصلاحات کا عمل جاری رکھنے پر تاکید کی ہے، اور یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ صدارتی انتخابات کے بعد مغرب اور اس کے علاقائی اتحادیوں کا موقف مزید کمزور ہو جائے گا۔ صدر بشار اسد 17 جولائی کو پارلیمنٹ کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھا کر نئے صدارتی دور کا آغاز کریں گے۔ توقع ہے کہ موجودہ وزیر اعظم وائل الحلقی اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں تاکہ نئے کابینے کی تشکیل کا راستہ ہموار ہو سکے۔ اکثر مبصرین کا خیال ہے کہ شام کے صدارتی انتخابات صدر بشار اسد کے انتخاب سے زیادہ ایک ریفرینڈم تھا، جس میں اس ملک کے عوام نے دراصل اپنی آزادی و خود مختاری، امن و سلامتی کے حق میں ووٹ دیا ہے۔
جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہماری اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد مہدی شاہبہ صاحب، جنہوں نے شام کے صدارتی الیکشن کا شام جا کر قریب سے جائزہ لیا ہے اور خود وہاں پر موجود رہے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
آپ سے گفتگو ہوتی رہی ہے مختلف پروگراموں میں، لیکن میں پھر وہی سوال دہراؤں گا کہ مجموعی طور پر شام کے صدارتی الیکشن کو آپ نے کیسا دیکھا اور کیسا پایا؟
بھائی، شام کا صدارتی الیکشن جیسا کہ رپورٹوں میں بھی آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا اور میں نے خود وہاں قریب سے دیکھا، حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 جون کو شام کے عوام نے صدارتی الیکشن میں حصہ لینے سے زیادہ ڈیموکریسی کا جشن منایا، یعنی یہ واقعی حقیقی معنوں میں ڈیموکریسی کا جشن تھا، فیسٹیول تھا ڈیموکریسی کا۔ یہ شام کا پہلا ایسا صدارتی الیکشن تھا جس میں 1 سے زائد امیدوار میدان میں تھے، اور شام کے عوام اس جذبے کے ساتھ الیکشن میں اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرنے کے لیے گھروں سے نکلے تھے کہ انہیں اگر اپنے ملک کو غیر ملکی انسرجنسی سے بچانا ہے، دہشت گردی سے بچانا ہے، ٹیررزم سے بچانا ہے، تو انہیں ووٹ دینا ہے۔ وہاں پر جو عام نعرے جو دیواروں پہ لکھے ہوئے تھے، جو بینروں پہ لکھے ہوئے تھے، وہ یہ تھا کہ ہمارا ووٹ ہماری آزادی کا ضامن ہے، ہمارا ووٹ ہماری سلامتی کا ضامن ہے۔ یعنی دو نعرے، یہ دو سلوگن تھے جو بہت زیادہ، اور اسی جذبے کے تحت وہاں لوگ نکلے تھے۔ اور ایک چیز جو وہاں پر شاید خود حکومت کو بھی اتنی توقع نہیں تھی اتنے بھاری ٹرن آؤٹ کی، چنانچہ الیکشن کے دن دوپہر کے وقت، یعنی جو بیلٹ پولنگ کے جو مراکز تھے وہاں جو بیلٹ باکس رکھے گئے تھے، ظاہر ہے پورے دن کے لیے رکھے گئے تھے، دوپہر تک وہ بیلٹ باکس بھر گئے اور پولنگ اسٹیشنوں سے مزید بیلٹ باکسوں کی درخواست کی گئی، وہاں مزید بیلٹ باکس۔ ہم لوگ یعنی ہماری جو پوری ٹیم تھی مختلف جگہوں پہ، مختلف شہروں میں لوگ گئے تھے، میں خود دمشق میں تھا اور کئی پولنگ اسٹیشن پر میں گیا۔ 7 بجے سے پہلے، 7 بجے پولنگ شروع ہونے والی تھی، ہم لوگ 6 بجے نکل گئے، تو پولنگ شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے سے لوگ وہاں پر موجود تھے، لائن میں لگے ہوئے تھے، اور پولنگ کے لیے 7 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا۔ 7 بجے وہاں پر لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے اور بہت سے پولنگ اسٹیشنوں پر ہزاروں افراد بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہاں پر سسٹم یہ تھا کہ لوگ لائن میں لگ کے جا کے ووٹ دیتے تھے۔ جو لوگ لائن میں، اگر لائن میں 100 لوگ، 200 افراد لائن میں لگ سکتے ہیں، تو 1,000, 1,500, 2,000 لوگ وہاں پر سڑکوں پر جشن منانے میں اور نعرے لگانے میں میوزک وغیرہ کے ساتھ وہ لے کے آئے تھے، اس میں مصروف رہتے تھے۔ جب وہ گروپ جو لائن میں تھا وہ باہر سے نکلتا تھا، تو پھر دوسرا گروپ جا کے ان میں سے لائن میں لگتا تھا، اور یہ سلسلہ 12 بجے رات تک جاری رہا۔ 12 بجے تک 5 گھنٹے کے لیے وہاں پر توسیع کی گئی، تو 12 بجے رات تک یہ تو جو ٹرن آؤٹ تھا، جو لوگوں میں جوش و جذبہ تھا وہ بے نظیر تھا۔ وہ کم سے کم مشرق وسطی میں تو آپ جو عرب ممالک ہیں ایران کو چھوڑ کے کسی کہیں اور یہ منظر دیکھنے کو نہیں مل سکتا ہے. خود جو ناظرین آئے تھے امریکہ کے, کینیڈا کے, آسٹریلیا کے, برطانیہ کے, مختلف ایشیائی, امریکی اور یورپی ملکوں کے جو ناظرین تھے, این جی اوز جو مختلف تھیں ان کے نمائندے تھے, وہ حیرت کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ منظر انہوں نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہے.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی سورب کمار شاہی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
شاہی صاحب میں جانتا ہوں کہ پہلے دن سے جب سے شام میں بحران شروع ہوا ہے اس وقت سے اب تک آپ کی نگاہ اور نظر شام کے حالات پر ہے. شام کے صدارتی الیکشن کو آپ نے کیسا دیکھا؟
دیکھیں بہت انٹرسٹنگ اسپیکٹ جو اس الیکشن کا ہے جو میرے خیال سے سبھی کو ڈسکس کرنی چاہیے وہ یہ کہ جو ویسٹرن پروپیگنڈا ہے وہ بیسیکلی اس بات پہ بیسڈ تھی کہ وہ ایک اس کو پورے پروسیس کو ڈی لیجیٹیمائز کر سکے, یعنی اس کو کہہ سکے یہ کہ غیر قانونی یہ پورا منظر رہا ہے. دیکھیں یہ بات آسان ہوتا ہے اگر آپ کا کنٹرول میڈیا پہ ہو تو اس کے بعد اگر جو بھی ریزلٹ آتی ہے آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو ہم الیجیٹیمیٹ مانتے ہیں. لیکن جو ایک لائیو پکچر ہوتی ہے جب آپ بھیڑ دیکھتے ہیں, لوگوں کو لائنوں میں لگے دیکھتے ہیں, جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابھی جو لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں اور سارے شہروں میں لگی ہوئی تھی سیریا کے, چاہے وہ نارتھ میں ہو یا ساؤتھ میں یا جو ویسٹ میں ان کا میجر پاپولیشن بیسز ہیں, اس ویڈیو کا, اس فوٹوگراف کو کیسے ڈینائی کریں گے آپ؟ یہ سب سے بڑی مشکل جو ویسٹرن جو میڈیا ہے اس کے سامنے یہ آئی کہ وہ اب اس کو کیسے ڈینائی کریں. اسی سے بچنے کے لیے انہوں نے جو کوشش کی وہ یہ کوشش جو آپ نے یورپ میں دیکھا کہ کئی ممالکوں میں, خاص کر فرانس میں, نیدرلینڈس میں اور بھی کئی ممالک ہیں جہاں پہ جو ریفیوجیز تھے یا جو پہلے سے سیریئنز وہاں رہ رہے ہیں ان کو ووٹ دینے سے منع کیا گیا. کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ آپ پیرس میں اپنے میڈیا کو کیسے روک پاتے جب وہ دکھاتا کہ پیرس میں ایمبیسی کے باہر جو ہے وہ 3000 لوگ لگے ہوئے ہیں, یہ فوٹو کو آپ کیسے ڈینائی کرتے؟ تو ایک شروع سے یہ قواعد تھی کہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو, یہ یعنی میڈیا میں یہ ویژول جو ہے وہ نہ آئے, چاہے وہ آڈیو, چاہے وہ ویڈیو کے روپ میں ہو, چاہے وہ پکچرز کے صورت میں ہو, یہ نہ آئے کہ لوگ وہاں بڑی تعداد میں لائن میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنے حق کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو ایک وہ جو ہے وہ سب سے بڑی وکٹری مجھے لگتی ہے کہ وہ سیڈین گورنمنٹ کی ہوئی ہے, کیونکہ وہ پکچر بیم ہوئی پوری دنیا میں اور کیونکہ وہ اتنی زیادہ تعداد تھی کہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے تھے. اب آپ دیکھیں نا لبنان سے جو بھیڑ آئی ہے, آپ کو پتا ہوگا وہ جو منظر تھا وہاں پہ, اور جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لبنان کی حکومت نے کہہ دیا تھا کہ جو واپس سیریا جائیں گے انہیں واپس آنے نہیں دیا جائے گا, پھر بھی اس طرح کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک قانون بننے کے باوجود بھی سیریئنز جو تھے وہ نہ سیریا گئے, وہ سیریا گئے ووٹ دیا اور وہ کہے کہ کوئی نہیں ہم واپس نہیں آ سکتے لیکن یہ ہمارا ادھیکار ہے ہم اسے یوز کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ فرانس ہو, نیدرلینڈ ہو, یو اے ای ہو, ترکی ہو, چارٹرڈ فلائٹ کر کے لوگ الیکشن میں ووٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اپنے پاکٹ سے خرچہ کر کے اس طرح کا اور ایک چارٹر فلائٹ آپ لیتے ہیں یورپ سے اور آپ آتے ہیں ووٹنگ کرنے کے لیے. تو ایک جذبہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. دوسری بات بہت امپورٹنٹ, ابھی آپ نے سنا ہوگا خاص کر لاسٹ 2-3 دنوں سے کہ ویسٹ میں کچھ جو ہلکے ہیں اس میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی سول وار چل رہا تھا, اس میں آپ نے انتخابات کروا دیے, جی اس کی تو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. تو میرا ان کا جواب ہے کہ جب عراق میں سول وار چل رہا تھا اور وہاں الیکشن ہوا تو اس کی لیجیٹیمیسی تھی, جب افغانستان میں دو چناؤ ہوئے اور میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں میں تھا میں وہاں پہ, افغانستان میں عراق والے انتخابات میں بھی میں تھا, وہاں بھی تو سول وار چل رہا تھا, اس کی تو لیجیٹیمیسی تھی. ابھی یوکرین میں الیکشن ہو رہے ہیں جس میں کہ ایسٹرن یوکرین میں ایک ووٹ نہیں پڑا کہیں پہ, نہ تو ڈونسک میں پڑا, نہ ہی لوسانگ میں پڑا, اس کی لیجیٹیمیسی تھی. اور میں اس سے پہلے جانا چاہتا ہوں کہ امریکہ جو دنیا میں سب سے زیادہ ڈیموکریٹک ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو بتائیں کہ ابراہم لنکن جس زمانے میں تھے جب سول وار امریکہ میں ہو رہا تھا تو اس میں, اس زمانے میں 11 سب سے بڑے جو سدرن اسٹیٹس تھے سدرن امریکہ کے جی. انہوں نے چناؤ میں حصہ نہیں لیا تو اس کی لیجیٹیمیسی تھی. اس کا چہرہ تو آپ نوٹوں میں چھاپ کے رکھتے ہیں ڈالرس میں, اس کی لیجیٹیمیسی مانتے ہیں. जॉर्ज वॉशिंगटन जो अमेरिका में पहली इलेक्शन हो रही थी उस समय सिविल वॉर चल रहा था, तो जो तीन सबसे बड़े स्टेट थे जिसमें कि फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे उस जमाने में स्टेट शामिल थे, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, तो लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन प्रेसिडेंट चुन लिए गए, तो उसकी लेजिटिमेसी थी। तो ये जो हिपोक्रेसी है वो समझ में नहीं आती कि जब आपका इलेक्शन हो, जब इराक हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिका में दो दो दफ़ा जब आप उनके फाउंडिंग फादर्स का इलेक्शन हो वो लेजिटिमेसी है, लेकिन हम अगर चुनाव कराएं जिसमें कि इतने बड़ी तादाद में लोग हिस्सा लेना चाह रहे हों और आप उसको हिस्सा ना लेने दें तो वो जो है डिलेजिटिमेट हो जाता है। तो ये हिपोक्रेसी पता नहीं इन्हें समझ में नहीं आती, या पता नहीं ग्लोबल ऑडियंस को ये समझ में नहीं आती, या शायद इनको नज़र ही नहीं आता कि ये हिपोक्रिटिकल कुछ बात कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ से इस तरह के एनालिसिस पे ये लोग पहुँचते हैं।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊँगा आपकी खिदमत में। शाफत साहब, आम तौर से मगरिब का ये प्रोपेगंडा था गुज़िश्ता दो तीन चार साल से कि बशार असद को बहुत कम लोगों की हमायत हासिल है, कुछ शियों की, कुछ अलवियों की, और वो सही मानों में आवाम के नुमाइंदे या आवाम के सदर नहीं हैं। आपने क्या देखा वहाँ पर?
भाई ये आप देखें कि शाम की जो आबादी है उसमें अगर आबादी का तनासब देखें तो जो ख़ुद मगरबी ज़राए ने जो लिखा है वो ये 70-74% आबादी शाम की सुन्नी, बचते हैं 26%। 26% में शिया इसनाशरी हैं, अलवी हैं, ईसाई हैं, समझे 10% ईसाई हैं, इसके बाद फिर शिया इसनाशरी हैं और आपके दरूजी हैं और ये दूसरे हैं। वोट जो पोलिंग हुई है, जो आप देखिए टर्नआउट कितना रहा है, 73% रहा है। तो ये जो 73% से ज़ायद टर्नआउट रहा है, तो इसमें अगर टोटल जितने भी गैर सुन्नी अगर मिला लिया जाए, जो अकलियत हैं कि सारी अकलियतों ने दिया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 25% 24% 26% जाके वोट कास्ट होना चाहिए था अगर सब ने 100%
100%
अच्छा, और अकलियतों के 100% तो वोट नहीं पड़े होंगे, ये तो बिल्कुल मतलब समझने वाली बात है कि वोट तो ये उनका कहना कि साहब उसमें थोड़ी सी अकलियत, भाई वहाँ तो हमने करीब से जो देखा, जब आवाम जिस तरह से सड़कों पे निकल के बशार असद के लिए नारे लगा रहे थे, उसकी हिमायत में नारे लगा रहे थे, और जिस तरह से पोलिंग में लोगों ने हिस्सा लिया है और जिस तरह से अपना वोट कास्ट किया है, और वोट जो वोट कास्ट किए गए हैं उनका जो तनासुब है, टर्नआउट है, वो मगरबी प्रोपेगंडे का तोड़ है, वही ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि मगरिब का ये प्रोपेगंडा कि बशार असद की हिमायत थोड़ी सी अकलियत की तरफ से है, ये गलत है। अगर सही मानों में आप आज की तारीख में, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आज से 3 साल पहले जब बशार असद जब आवाम सड़कों पर आए थे और उन्होंने सियासी असलाहत का मुतालबा किया था, तो 50% से ज़ायद लोग बशार असद के मुखालिफ रहे हों शायद, लेकिन जब बशार असद ने सियासी असलाहत का वादा कर लिया और उसके बाद मगरिब ने अवामी मुजाहरे को तब्दील कर दिया दहशतगर्दी में, और दुनिया के 80 मुल्कों से दहशतगर्द वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके उन्होंने शहरों पर कब्ज़ा किया, शहरों पर कब्ज़ा करने के बाद शाम के तकरीबन सभी इलाकों पर दहशतगर्दों का कब्ज़ा हो गया था, दमिश्क का आधा दमिश्क दहशतगर्दों के कब्ज़े में था। शाम की हुकूमत अगर चाहती तो बहुत आसानी के साथ, जैसा कि ये जो प्रोपेगंडा किया जा रहा है कि ये आवाम के दुश्मन, तो इस 3 साल के अरसे में, 2 यानी 1 साल से शाम की हुकूमत को कामयाबी मिलना शुरू हुई है, 2 साल तक उनका कब्जा रहा है, 2 साल तक उन्होंने दहशतगर्दों ने जिनको मगरिब की भी हिमायत हासिल थी और सऊदी अरब वगैरह की भी, बदतरीन जुल्म इन्होंने आवाम पर किया है, शहरों पर इनका कब्ज़ा रहा। शाम की हुकूमत ने ना शहरों पर गोलाबारी की, ना बमबारी की, ना हवाई हमला किया, जबकि मशरक़ वस्ता में सबसे मजबूत फौज शाम के पास थी। शाम की मुश्किल क्या थी? मुश्किल ये थी कि शाम की फौज के पास क्लासिक जंग का तजुर्बा था, लेकिन गोरीला वार का तजुर्बा नहीं था, शहरी जंग का तजुर्बा नहीं था कि शहरों में जंग कैसे लड़ी जाए, इसका तजुर्बा नहीं था। इसका तजुर्बा जब उन्होंने हासिल कर लिया है, उनको उन्होंने इसकी जब ज़रूरी ट्रेनिंग हासिल की है, ज़रूरी इसकी स्ट्रेटेजी उन्होंने तय की है, और इसके बाद फिर शहरों की जंग में जब वो उन्होंने महारत हासिल की, तो फिर शहरों के इलाके उन्होंने खाली कराए। खाली कराने के बाद आज की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा 15% इलाका, सिर्फ एक इलाका है रक्का का, एक प्रोविंस है, 14 प्रोविंस में से एक प्रोविंस दाइश के पास है। 85% इलाकों पर शाम के हुकूमत का कब्ज़ा हो चुका है। जो लोग मुहाजरत करके मुल्क से चले गए थे उनमें से अक्सरियत वापस आ चुकी है और अक्सर लोग अपने शहरों में वापस आ गए हैं। इनके साथ हुआ ये कि इनमें जो लोग सियासी इस्लाहात के हामी थे और सियासी मसाइल में शाम के सदर बशार असद के मुखालिफ थे, वो भी इनके हामी हो गए। इसलिए कि इंसर्जेंसी तो कोई नहीं चाहता है, गैर मुल्की मुदाखलत कोई नहीं चाहता है, दुनिया के 80 मुल्कों के दहशतगर्द जमा हो जाएं उनके मुल्क में और आके उनकी माँ बहन बेटियों के साथ ज्यादती करें और उनके बच्चों को यतीम करें, ये तो कोई नहीं चाहता है। तो इस वक्त शाम की अक्सरियत 90% से ज़ायद, यकीन के साथ जो कहा जा सकता है वो ये कि 90% से ज़ायद अवाम, चाहे वो शिया हों, चाहे सुन्नी हों, चाहे द्रूजी हों, चाहे ईसाई हों, ये बशार असद के साथ है। नौजवान तबका बशार असद का आशिक है। जिस तरह से नौजवानों को हमने सड़कों पर देखा है, लोगों ने इस इलेक्शन में, नौजवानों ने अपने खून से बैलेट पेपर पर निशान लगाया है। बहुत से पोलिंग स्टेशनों पर मैंने खुद देखा है कि उंगली पे लोगों ने चीरा लगाया है और उसके खून से निशान लगाया है। कुछ जगहों पर नौजवानों ने अपने सीने पे चीरा लगाया है और वहां से जो खून निकला है उससे, तो ये चीज ये क्या जाहिर करती है
जी?
अक्सरियत उनके साथ है, बशार असद की हामी।
जी बहुत शुक्रिया। चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं आलम उमूर के माहिर डॉक्टर मखसूस सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
सिद्दीकी साहब, अभी जैसा कि शाह साहब फरमा रहे थे, अभी दमिश्क से लौटे, उन्होंने आंखों देखा हाल बताया कि शाम में बशार असद को ख़ास तौर पर जवानों और नौजवानों में जो मकबूलियत हासिल है वो दीवानगी की हद तक है। 3 साल तक बहरानों का शिकार रहा यह मुल्क, दहशतगर्दी का दौर दौरा रहा है, उसके बावजूद बशार असद इतने मकबूल, इसकी क्या वजह हो सकती है?
देखिए, इसके दो कई सारे वजूहात हैं। वो नौजवान जिन्होंने शुरू में शायद इनके खिलाफ जो एहतजाज शुरू हुआ था उसका साथ दिया हो या कम से कम जहनी तौर पर उनके साथ हों, उन्होंने देखा कि 3 साल में ये जो सो कॉल्ड इनकी जो रेजिस्टेंस फोर्स थी कि उनके जो कारनामे इतने ख़राब और इतने भयानक और इतने गंदे थे कि उन्होंने अपने ही शहरियों के ऊपर जिस तरह से जुल्म ढाया है, जिस तरह से के छोटी बच्चियों के साथ उनको कत्ल किया है, जब सुसाइड बॉम्बिंग की है, शहरियों को मारा है, तो उन्होंने देखा। और बाहर से इसमें एक बड़ी तादाद बाहर से नौजवानों की आके जो अलकायदा के और वगैरह के हिमायती जो जिनको सऊदी और तुर्की हुकूमत और कतरी हुकूमत मदद कर रही थी, उन्होंने इनके साथ मिल के अपने ही शहरियों पर जो जुल्म ढाया, तो उनकी आंखें सही तरह से खुल गई। उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि इस ये लोग जो हैं कभी भी इस काबिल हों कि मुल्क की बागडोर संभाल सकें। और वो बल्कि उनका से मकसद एक ही है कि शाम को बिल्कुल बर्बाद कर देना। वो तो जाहिर है, देखिए ये सब कुछ दरअसल जो शुरू हुआ है 3 साल पहले मार्च 2011 से, ये तो एक बड़ा प्लान था। वो प्लान वही था कि जिस तरह से अफगानिस्तान, इराक, उसके बाद लीबिया को जो ख़त्म किया है, उसके शाम की बारी थी। अच्छा, शाम का कि जो सबसे बड़ा, जो जैसा मैं पहले भी बयास कर चुका हूँ, जो उनका जो क्राइम था या गुनाह था, ये था कि वो वाहिद मुल्क है मशरिक़ वस्ता में जिसने ईरान का साथ दिया, जिसको कहते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं कि रोड टू तेहरान गोज़ वाया डमास्कस। तो वो उसका जो असल में देखा जाए तो जो इसकी जो कीमत अदा करनी पड़ी है शाम को, वो सिर्फ इस वजह से कि शाम ने ईरान का साथ दिया और ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक अमेरिका से कि कोई ऑर्डर्स नहीं लिए हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने आजाना दौर पे वो अपने काम अंजाम दे रहा है। तो ये जो नौजवानों की बात आप फरमा रहे थे, उन्होंने ये देखा कि अच्छा ये बिल्कुल कहना गलत है कि इस किस्म की कि शिया सुन्नी अलवी इनकी कोई जंग थी। कभी भी मेरा जो तजर्बा है यहाँ के ऊपर, और बहुत काफ़ी जो शाम के जो बाशिंदे यहाँ इंग्लिस्तान में हैं उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ख़ासतौर पर बशार असद के आने के बाद कि इस किस्म का जो फ़िरका वाराना जो 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 रंग इसको उन्होंने अमरीका ने, तुर्की ने, सऊदी अरब ने, कतर ने दिया, इसमें कोई नहीं था, वो सब वही कहते थे कि अलबत्ता एक बात ये ज़रूर मैं अर्ज़ कर दूं कि जो 2011 के शुरू में तो एक दो जो मज़ाहरे हुए उसमें जिस तरह से फ़ौजों ने सख्ती से उनको दबाया और वो जिसका मैं समझता हूँ कि कुछ हो सकता है कि वो नतीजा ऐसा हो कि ये वो जो मज़ाहरे जो थे वो एक तरह के असलहा वगैरह फिर उनको दिया गया और वहाँ से काम शुरू हुआ। असद साहब को ये चाहिए था उस वक्त मेरे ख्याल में, अब तो ये बात ख़त्म हो चुकी है कि अगर वो फ़ौजों के और कमांडरों के जिन्होंने इस तरह से जो सख्ती से उन मज़ाहरीन को दबाया था उनके खिलाफ़ कुछ अगर वो कार्रवाई करते तो मुमकिन है कि ये बात यहाँ तक भी नहीं बड़ी होती। लेकिन ये जहाँ तक इसका सवाल है कि अब इनके के जो जो इन बशार अल असद के मुवाफिक जो लोग हैं उसमें अक्सरियत जो है वो सुन्नी हो, क्योंकि ज़ाहिर है क्योंकि अक्सरियत वहाँ पे जो जो बाशिंदे हैं वो सुन्नी हैं, तो अब वो ये कहना फजूल है कि इनकी इनकी मदद जो है वो ईसाई ग्रुप और जो छोटे छोटे जो और जो जो मजहबी ग्रुप हैं वो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी इनका जो सपोर्ट है वो जो ब्रॉड बेस है वो पूरे मुल्क से आ रहा है, उसके अंदर सब शामिल हैं, उसमें ज़ाहिर है अक्सरियत सुन्नियों की भी शामिल है। तो अब वो अब ये है कि जो वहाँ के शहरी हैं सबकी आंखें खुल गई हैं कि ये जो 3 साल तक मुल्क की तबाही हुई है जिसमें एक हिसाब से कहा जाए $100 बिलियन का तकरीबन नुकसान हुआ है सिर्फ यानी जो कोलैट जो जो डैमेज के हिसाब से, और जो एक 1,160,000 या कुछ लोग कहते हैं कि 2.5 लाख जो जो जाने गई हैं वो उसमें लोगों ने देखा है कि ये लोग इस काबिल नहीं है जिन्होंने ये एहतजाज शुरू किया था कि उसके उनको हाथ में किसी सूरत से भी मुल्क की बागडोर दी जाए। तो अब वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द अमन आए। और देखिए ये जो उसमें हम्स में जो अभी जो ये जो हुआ है आपका जो डील हुई थी कि जिसमें उनको बागियों को वहाँ से हटाया गया जिसमें यूएन भी और ईरान भी और रूस भी शामिल था, उसकी वजह से ये इतनी बड़ी चीज़ ये हो गई है कि हालांकि बिल्कुल वो जो सूबा है वो बर्बाद हो गया है लेकिन वहाँ के जो जो लोग भी बाशिंदे वहाँ से चले गए तो वो अब आस्ता आस्ता वापस लौट रहे हैं, ज़ाहिर है उनके घर और उनके रिहाइश गाँव सब तबाह हो चुकी हैं। तो अब इस तरह की अब जो डील है तो अब मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन ये जो है इंसर्जेंसी जो है वो ख़त्म पे है।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, मैं फिर हाजिर हूँ।
जुलाई में तो इनका जो 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 टर्म था ख़त्म हो रहा था वैसे भी 16-17 जुलाई को, तो ये जो इंतखाबात तो ज़रूरी थे होने, तो उन्होंने सही तरह से इंतखाबात किए हैं और इंतखाबात का ये बहुत ही पॉजिटिव ये नतीजा है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
जैसा कि ना सिर्फ नौजवान में मैं समझता हूँ कि पूरे अवाम ने उनको खुल के असद साहब का साथ दिया है और ये बहुत बड़ा तमाचा है मैं समझता हूँ कि अमेरिका के मुंह पे कि जो अभी तक यानी जो अभी जो मीटिंग हुई है जिसमें ओबामा साहब अभी ये कोशिश कर रहे थे कि किसी सूरत से उनको इजाज़त मिल जाए कि कम से कम बमबारी भी कर सके ईरान के ऊपर, वो उनको बहरहाल ईरान को शुक्र है कि रूस का और चीन का क्योंकि मदद मिली और उनको ये भी मालूम है कि शाम को और उनको ये भी मालूम है कि शाम पे हमला करना इतना आसान नहीं है वो कि शाम।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। नाज़रीन सिद्दीकी साहब के आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, सिद्दीकी साहब ने एक बात कही कि शाम के लोग क्यों मुखालिफ हैं। शाम की मुखालफत की जो बुनियादी वजह है मग़रिब और दीगर जो क़ुव्वतों की तरफ से वो ये कि शाम वो मुल्क है अरब मुल्कों में जो फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा हामी है, और अगर शाम ईरान के साथ या ईरान शाम के साथ है तो उसकी एक वजह भी यही है कि फिलिस्तीन के मामले में या फिलिस्तीन के मौजू में शाम और ईरान का नज़रिया या मौक़िफ़ एक जैसा है और दोनों ही मुल्क मज़लूम फिलिस्तीनियों की हमायत करते हैं। और जैसा कि हमारे सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर शाम की ईरान से दोस्ती है तो इसमें एक बड़ी वजह यही है कि दोनों फिलिस्तीनियों के हामी हैं और इसराइल की तौसी पसंदी और उसकी गासिबाना कार्रवाइयों के मुखालिफ हैं। प्रोग्राम जारी रहेगा मगर यहाँ पर मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं जी। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं सौरभ कुमार शाही साहब। शाही साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखें इलेक्शन तो कमोबेश दुनिया के बेशतर मुल्कों में होते हैं, ये एक रूटीन का अमल है और शाम में भी इलेक्शन हुआ, लेकिन जिन हालात में शाम में सदारती इलेक्शन हुआ क्या उसे सिर्फ इलेक्शन ही कहा जाएगा या उसके पीछे कुछ और भी पैगाम है?
देखिए, जैसा कि आपने पहले ही फरमाया था जब प्रोग्राम शुरू हुआ था कि ये इलेक्शन तो है ही, ये एक बहुत बड़ा रेफरेंडम भी था और रेफरेंडम है। जो जहाँ तक बात होती है वेस्ट में, खासकर बहुत सारे मीडिया में इसको सेक्टेरियन, जैसा कि अभी आप गुफ्तगू कर भी रहे थे, कि इसको एक सेक्टेरियन एंगल से इसको पेश किया जाता है कि जी देखें, ये तो जो माइनॉरिटी सिर्फ है वो हुकूमत के साथ है, बाकी सुन्नी नहीं है। मैं यहाँ दो तीन इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ, दो तीन फैक्ट बताना चाहता हूँ जिससे कि काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। बाथ पार्टी जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं बशर अल असद साहब, वो बात पार्टी जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होगा, क्योंकि वो सोशलिस्ट मॉडल पे स्ट्रक्चर उनका बेस्ड होता था, तो वो कैडर बेस्ड पार्टी होती थी, जैसे दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी हर मुल्क में होती है, उस तरह से ही ये बात पार्टी जो कि स्ट्रक्चर उन्होंने सोशलिज्म से लिया था, तो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। बात पार्टी की जो पार्टी की मेंबरशिप है, जिसको कार्ड होल्डर, आपको पता होगा कार्ड होल्डर एक टर्मिनोलॉजी होती है खासकर जो सोशलिस्ट बेस्ड पार्टी होती है उसमें, उसमें 3.1 मिलियन एक्चुअली, यानी 31 लाख कार्ड होल्डर्स जो हैं वो बाथ पार्टी के मेंबर हैं, यानी जो कार्ड होल्डर कैडर जिसको कहते हैं। उस 3.1 मिलियन में से 2.2 मिलियन परसेंटेज आप निकाल लें, 2.2 मिलियन, यानी 22 लाख कार्ड होल्डर जो हैं वो सुन्नी हैं। तो यानी जो बेसिस पार्टी की है, जिस पार्टी को बशर असद रिप्रेजेंट करते हैं, उसके 3.1 मिलियन मेंबर में से 2.2 मिलियन मेंबर्स, यानी 22 लाख मेंबर जो हैं वो सुन्नी हैं, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे जो इलेक्शन में आपने देखा होगा अलेपो में, जहाँ की वेस्टर्न अलेपो पे हुकूमत का वापस से कब्जा हो चुका है, लेकिन जो ईस्ट अलेपो है वहाँ अभी भी जो हैं टेररिस्ट जो हैं उनका कब्जा है। आपने नोटिस की होगी कि ईस्ट अलेपो भी सुन्नी डोमिनेटेड है, वेस्ट अलेपो भी सुन्नी डोमिनेटेड है। वेस्ट अलेपो में तो आपने भीड़ और लंबी लाइनें देखी होंगी। आपको ये बता दूं कि ईस्ट अलेपो से अपने जान को जोखिम में डाल के जो पॉपुलेशन है वो जो अपोजिशन की बॉम्बार्डिंग जो कर रहे थे जो आर्टिलरी से या बाकी चीज़ों से, उसके बीच से निकल के वेस्टर्न अलेपो आके उन्होंने वोटिंग की है, ये सुन्नी है। एक और मैं आपको बात बताता चलूं, जो इन्होंने स्टार्टिंग में कही, मैंने आज तक ये बात कहीं किसी भी चैनल में या आपने किसी रिपोर्ट में नहीं लिखा, लेकिन चूंकि यहाँ गुफ्तगू हो रही है तो मैं इसकी बात मैं आपको बताता चलूं कि बहुत शुरू में 2012 में जब मैं मार्च में गया था वहाँ पे, उस समय तक ये इतना फैला नहीं था इंसर्जेंसी। होम्स जो था वो उस समय सेंटर माना जाता था और सारे जो फॉरेन फाइटर्स जो टेररिस्ट थे वो होम्स में इकट्ठे थे। होम्स को चारों तरफ से घेर लिया था और जो कमांडर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, अभी वो जिंदा हैं सीनियर आर्मी के कमांडर, वो होम्स के चारों तरफ उन्होंने घेरा बना रखा था। तो हम उनसे बात कर रहे थे, मैं था, कुछ और जर्नलिस्ट थे बाहर से दूसरे मुल्कों से, हमने उनसे कहा कि आप फायरिंग शुरू क्यों नहीं करते, इसको यहीं ख़त्म क्यों नहीं कर देते, क्योंकि अगर यहाँ पर आप इसको ख़त्म कर देंगे होम्स में तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो उस कमांडर ने, जो कि ब्रिगेडियर लेवल के कमांडर हैं, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कही कि बशर अल असद का ये कमांड है कि चूंकि होम्स एक सुन्नी शहर है, इसमें एक भी कोलेट्रल डैमेज, वो उन्होंने कहा कि हम कोलेट्रल डैमेज एक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी तुम इनडिस्क्रिमिनेटरी सेलिंग जो है इस सिटी का नहीं करोगे। अगर उस दिन उस कमांडर ने इनडिस्क्रिमिनेटरी सेलिंग उस शहर की होती तो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती, आज इंसर्जेंसी इतनी नहीं फैली होती। लेकिन सिर्फ चूंकि असद साहब ने ये कहा कि हम किसी भी एक इनोसेंट आदमी की, एक इनोसेंट सुन्नी है उस शहर में, उसकी जान नहीं लेना चाहते, इंसर्जेंसी वहां से फैली। तो आप देखें, जब दुनिया बात करती है सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट की, तो उन्हें ये समझ में आनी चाहिए कि इस लेवल पे वहां पे हुकूमत जो है उन्होंने ध्यान रखा है सुन्नियों का। मैंने आज तक कभी ये जिक्र नहीं किया और आज भी मैं कमांडर का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। और ये मैंने ये सवाल पूछा और मुझे ये जवाब मिला, तो मुझे किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी ये बात पता नहीं चली, ये मेरी अपनी दिखी हुई सुनी हुई बात है। एक सबसे बड़ी चीज़ जो इलेक्शन में ये है, वो इसने इसको जैसा उन्होंने कैलकुलेट करके बताया, इसने डेमोलिश कर दिया इस पूरे प्रोपेगेंडा को कि ये जो गवर्नमेंट है उसको सिर्फ माइनॉरिटी सपोर्ट बेस है। इसकी मेजोरिटी सपोर्ट बेस हमेशा से रही है और हमेशा से रहेगी। कुछ इलाके जैसे उन्होंने रक्का का बताया या डेरा में कुछ छोटा सा इलाका, ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पे जो कुछ अरब से सुन्नी अरब हैं वो ट्राइबल माइंडसेट में अभी भी रहते हैं, और उनका जो कह सकते हैं कि पिछले 60 सालों में बाकी जगह पे जहनी तौर पे या जो बाकी प्रोग्रेस हुई है उस तरह से उनका प्रोग्रेस नहीं हुआ, उनकी थिंकिंग जो है वो थोड़ी ट्राइबल अरब ट्राइबल थिंकिंग है। ये वो छोटी सी तादाद है जिन्होंने इनका मुखालफत किया और जो सपोर्ट करते रहे हैं इनिशियल डेज में अपोजिशन का। लेकिन ये कहना कि पूरी सीरिया में इसी तरह का एक जो है इसको आप कह सकते हैं कि माइक्रोकैज्म है और इसको आप इन्फ्लेट कर दें इस पूरे थ्योरी को, तो ये वहाँ पे लागू नहीं होती। मेजॉरिटी जो हुकूमत उसके हमेशा जो उसके साथ रही है। दो चीज़ अब इस इलेक्शन के आगे क्या है। इस इलेक्शन में ये तो पूरी दुनिया को दिखा दी गई कि देखें लोग किसको वोट करना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा ये शुरू से कहा गया कि देखें रिफ्यूजी जो दूसरे कंट्री में हैं वो तो असद के खिलाफ हैं, तो अगर असद के खिलाफ हैं तो दूसरे कंट्री में इतनी लंबी भीड़ हो गई कि वो 3 दिनों तक उनको कहना पड़ा कि भैया घर चले जाओ, यहाँ वोटिंग खत्म हो चुकी है। कल तक लोग की लाइनें लगी हुई थी। तो एक मैसिव प्रोपेगेंडा बैटल जो है उन्होंने ये जीत लिया है असद की हुकूमत ने। अब यह है कि जैसा उन्होंने बताया कि होम्स में जिस तरह की डील जो हुई है उस तरह के डील्स को अब पूरी सीरिया में इम्प्लीकेट जो है वो किया जाए, उसको उसका रिप्लीकेशन पूरी सीरिया में हो, और वो हो रही है। मैं आपको बताऊं कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपको पता चलेगा कि कई बड़े शहरों में ये चीज़ें हुई हैं।
जी बहुत शुक्रिया शाहबाज साहब। 3 तारीख को इलेक्शन हुआ और 4 को ही अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने बैरूत में बयान दिया कि जहाँ पर कई मिलियन वोटर्स वोट देने के हक़ से महरूम हो वहाँ के इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया जा सकता। क्या उन्होंने अपनी आँखों से कुछ देखा नहीं?
भाई देखिए, मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन ने एक और प्रोपेगंडा जो वेस्ट का था उसको भी उस पर भी पानी फेर दिया है। मगरिब वाले ये कह रहे थे कि बशार असद अपने आवाम का दुश्मन है और अपने शहरों पर इसने बमबारी की, गोलाबारी की और शहरियों को मारा है। जिस तरह से लोग सड़कों पर इसकी हिमायत में निकल रहे थे और जिस तरह से लोगों ने वोट दिया है, देखिए जिसका भाई मारा जाए, जिसका बेटा मारा जाए, जिसका शौहर मारा जाए, जिसके घर वाले मारे जाएं, मुमकिन है कि वो डर के खामोश हो जाए, लेकिन वो कभी अब कातिल की हिमायत में नारे नहीं लगाएगा और कातिल की जीत पर खुशी से झूमेगा नहीं, नाचेगा नहीं। तो यह इस बात का सबूत है कि बशार असद ने शहरों पर बमबारी नहीं की इनकी हुकूमत ने, और जैसा कि अभी शाही साहब ने बताया बहुत आसान था, हम उस पर जहाँ सारे दहशतगर्द जमा थे वहीं बमबारी करके ख़त्म कर देते, लेकिन चूंकि वहाँ पर बेगुनाह शहरी थे इसलिए मिलिट्री को इस बात की इजाज़त नहीं थी कि शहर पर बमबारी की जाए। अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, उन्होंने जो ये बात कही है कि जहाँ कई मिलियन लोगों को वोट देने का इम्कान न हो,
मौका न हो जी,
तो वहाँ इलेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ख़ुद जो अक्वामे मुत्तहदा की रिपोर्ट है, अक्वामे मुत्तहदा की रिपोर्ट ये है कि शाम से 3 मिलियन लोग हद अक्सर जो हैं 3 मिलियन लोग इस मुहाजिर शाम से बाहर हैं, दूसरे मुल्कों में, यूरोप में हैं, अमरीका में हैं, लेकिन ये जो शाम के मुहाजरीन हैं इनकी बड़ी तादाद आप देखेंगे तो पड़ोसी मुल्कों में, लबनान में सबसे ज़्यादा है, उर्दुन में है, कुछ थोड़े से तुर्की में है, बहुत कम है सऊदी अरब में या मुत्तहद अरब इमारात में, यूरोपीय मुल्कों में थोड़े से हैं। तो ये 3 मिलियन से अगर आप ये फ़र्ज़ कर लें कि 1.5 मिलियन लोगों को लोग वोट देने के अहल होंगे, तो इस 1.5 मिलियन में से कितने लोग उन मुल्कों में होंगे जहाँ वोटिंग नहीं हुई? लबनान में वोटिंग हुई, उर्दुन में वोटिंग हुई है, और दूसरे मुल्कों में लोगों ने वोट दिया है, और जिन मुल्कों में लोगों को वोट नहीं देने दिया गया आप बताते हैं यूरोप और अमेरिका में, इसमें कितने लोग होंगे? चंद लाख लोग बचते हैं जिनके लिए आप कह सकते हैं कि उनके लिए शायद वोट देने का इम्कान ना रहा हो। तो उसकी वजह भी अमरीका और यूरोप थे कि अमरीका में और यूरोप में जो शाम के बाशिंदे मुकीम थे उनको एक जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से वहाँ की हुकूमतों ने रोका। तो चंद लाख लोग थे, ये चंद मिलियन नहीं थे। तो पहली बात तो ये है कि वो चंद मिलियन का उनका ये कहना ये गलत है। और अभी जो शाही साहब ने बताया कि लबनान में वोटिंग हुई वो बहुत भारी वोटिंग हुई, और जो लोग वोट नहीं दे सके थे उन्होंने लबनान की गवर्नमेंट से ये कहा कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम शाम जाएं और वोट दे के वापस आएं। तो पहले तो गवर्नमेंट ने मना किया था लेकिन बाद में लबनान की गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी थी। मैं जब खुद लबनान के बॉर्डर से शाम में दाखिल हुआ हूँ तो कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी गाड़ियों की जो शाम से लबनान से लोग शाम में जा रहे थे। रक्का में जो लोग थे, रक्का में वोटिंग नहीं हुई लेकिन रक्का में आबादी नहीं है, यानी अक्सरियत रक्का की वहाँ से निकल चुकी है, थोड़े से लोग हैं जिन्हें दाइश ने इंसानी ढाल के तौर पे रोक रखा है, तो अक्सरियत ने तो वोट दे दिया है। इसके अलावा अभी यूक्रेन का हवाला आपने इन्होंने दिया सौरभ कुमार शाही ने, आप देखें कि यूक्रेन और शाम की कंडीशन का अगर मुआजना करें तो यूक्रेन की कंडीशन शाम से बहुत ज़्यादा बदतर है। यूक्रेन के आज शाम के अक्सर मगरबी मीडिया ने एक बात कही कि हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में वोटिंग हुई, लेकिन मगरबी मीडिया ने यह नहीं बताया कि 85% से ज़्यादा इलाके हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल है। यूक्रेन में क्या हुआ है, यूक्रेन के जुनूबी और मशरकी, पूरा जुनूबी और मशरकी यूक्रेन था, वहाँ वोटिंग का कोई इम्कान नहीं था, लोगों ने बैलेट बॉक्स तोड़ दिए थे और वोटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन अमेरिका और यूरोप ने न सिर्फ यह कि वहाँ के इलेक्शन को इंडोर्स किया बल्कि फौरी तौर पर वहाँ के नतीजे को तस्लीम किया, और बाराक ओबामा ने रूस से भी मुतालबा किया है कि वहाँ के जो नौ मुंतखब सदर हैं उनको तस्लीम किया जाए। तो ये उनका दौरा मेयार।
जी बहुत शुक्रिया आपका। सिद्दीकी साहब, हमारे पास कुल 2 मिनट का टाइम बचा है, हम आपसे माजरा चाहते हैं, लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि शाम के अवाम ने बशार असद पर भरपूर एतमाद किया और शाम की फ़ौज ने दहशत गर्दों को बुरी तरह से शिकस्त दी। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि शाम के अवाम भी और शाम की फ़ौज भी बशार असद पर भरपूर एतमाद करती है, तो अब अमरीका और मगरबी मुल्कों की आइंदा की पॉलिसी शाम के ताल्लुक से क्या होगी?
अब उनके उस देखिए अमेरिका की पॉलिसी और मगरब की पॉलिसी को तो बहुत ज़बरदस्त शिकस्त हुई है, और अब ये मैं समझता हूँ कि उनके पास अब कोई चारा नहीं है। जैसा कि जो यूक्रेन में इन्होंने अपनी हरकतों की वजह से, जो अब यूक्रेन का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अभी उसकी बात हुई थी, तो अब उनकी पॉलिसी वो कोशिश करेंगे कि दहशतगर्दी फैलाने की और वगैरह वगैरह, लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि कुछ इलाके रह गए हैं शाम के जिन पे फौज का पूरी तरह से कब्ज़ा नहीं है, उनको उनको साफ करके और बाकायदा कब्ज़ा करके और बाकी जो जितने भी महाजरीन उनको वापस बुला के, और अब जो तामीरी काम शुरू होगा इसमें ये लोग अब कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि अब ये एक अमेरिका के पास कोई ना हौसला है ना दम है ना उसके उसके उस पर कोई सपोर्ट है, तो अब होगा ये कि मैं समझता हूँ कि जल्द अज जल्द ये दोबारा से तामीरी काम शाम का शुरू होगा, और वो जो वो और ये कि वो मुल्क जिस 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 अब जगह पे था और यानी कि पूरे मशरक वस्ता में जो इसकी पोजीशन थी ख़ास तौर पे, और वो वापस आ जाएगी। और जहाँ तक सुन्नियों का ताल्लुक़ है, वो जो वहाँ के ऊपर जो सूफी जो जो मज़हब फॉलो किया जाता है वही वो वहाँ पे वो चलेगा, और जो इस कस्म के जो सलफ़ी और वहाँ भी और ये अलकादा ग्रुप है इनको वहाँ से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा मुकम्मल तौर पे।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हुआ चाहता है। सिद्दीकी साहब, हम आपसे माजरा चाहते हैं। सौरभ कुमार शाही साहब, आपका भी शुक्रिया। शफा साहब का भी शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, और अब जबकि इतने मुश्किल हालात में सदर बशार असद और उनकी हुकूमत ने वक्त मुकर्रा पर इलेक्शन कराए, तो अब जब आवाम का भारी मैंडेट उन्हें मिल चुका है तो यकीनी तौर पर सदर बशार असद जो इस्लाहात का उन्होंने वादा दिया है उस पर और तेज़ी से काम करेंगे, और उन्होंने इलेक्शन के दौरान इस बात पर ताकीद भी की है, तो यकीनी तौर पर अब शाम के आवाम के लिए खुशहाली के दिन शुरू हो चुके हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बासी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।